पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नी खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पवित्र आत्माएं परमात्मा के कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो। गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूं। अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली, और वो कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिस गाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र गीता का मनमाना आचरण है। तुम आप भी नरक में जाओगे, अनुयायियों को भी ले जाओगे। इस बात से दोनों चढ़ गए क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल हिंदुओं के ब्राह्मण गुरु, मुसलमानों के काजी और पंडित। अब परमात्मा कहा करते थे कि हम इनको सच्ची बतावें, सच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। सच्चे को जग मानना नहीं, झूठा जगपति आई हो। एक समय परमात्मा ऐसे ही कहा करते थे, सिकंदर लोधी बनारस काशी में चला गया, वहां मुसलमानों के जो पीर थे काजी थे उन्होंने और ये दाव लग गया कि कबीर जो है हमारी बेइज्जती करता है। उन्हें शिकायत करी, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। अन्य बोले भगवान हमारा तो जीना आराम कर दिया राजन, हम कहां जाएं, मुसलमान एक काफिर है हिंदू है। परमात्मा कहा करते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम ना हिंदू है ना मुसलमान, हम इंसान समझो मुझे। वैसे तो मैं भगवान हूं पर तुम जिस तरह सोच रहे हो मुझे इंसान समझा। अब हिंदुओं के गुरु तेन का अर्थ मुसलमान है और मुसलमानों का अर्थ हिंदुओं वाले गीत गावे है, यू हिंदू है यू काफिर है। तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान वो तो नूक है, मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब हो उस महापुरुष को तेन कहे जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, अरे आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और भगवान नू कहे मैं अपने आप को कहता मैं भगवान हूं अल्लाह हूं खुदा हूं। उस सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम कि भगवान एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। परमात्मा कबीर साहब कहा करते कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय शब्द से और वचन से जीवित कर दी, मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी, तुम जीवित कर नहीं सकते और बिस्मल करने लग गए। तेरा गजब ये कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम और शब्द फेर जवाई अनसा रख्या और मांस नहीं बख्या ऐसे पीर मोहम्मद भाई कहते वो जिसे महापुरुष थे वचन से गा मारी थी वचन से जीवित कर दी उन्हें मांस नहीं खाया और तुम रीस करते हो उस महापुरुष की और करते हो विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहां साथी कहे देसी आंख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी और कहा भगवान ऐसा जालिम आदमी है इनमें कहे मांस भी ना खाता वो और मुसलमान कहे अपने आप को उसकी ना मेरा उससे कि तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करते गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़ते। अब वहां मुसलमानों का जोर था सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था मुसलमान उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का और वहां झगड़े आन पड़ंत काजी खिलस करंत और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे सुन काजी राजी नहीं आप अल है खुदा गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। कौन से किसका आदेश है जिसने गऊ मार दी तूने किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने छह जन्म में सृष्टि रची सृष्टि रचना के अंदर उसके अंदर 26 जो श्लोक है 26 आयत है सेंटेंस है उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है नथिंग एल्स मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा छह दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने से पाप के भागी हो। तो यहां कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं हजरत मोहम्मद ने कहते हैं कि रोजा बंग नमाज दही रे बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहां लिखा उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया भगवान ने। पर किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं गौ हमारी मात है गऊ हमारी यानी सबकी मात है पीवत जिसका दूध है गरीबदास का जी कुटिल तन कतल किया औजूद निकम्मे या गाय सबको दूध देती है आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो घी खाओ दही पियो कितना अमृत भोजन है आहार है इसका और तुम मांस खाकर एक बारी खत्म कर देते हो नाला को या कोई अच्छी बात तुम्हारी। ये कहा करते थे गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा गरीबदास गिर दूध को ये सब ही आत्म खावे। गौ अपनी अम्मा है इस पर छुरी ना बहा और इसके घी दूध ने सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीड़े गरीबदास दरगह सहरे तेरे गड़ में पड़े जजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो फिर तुम्हारे वहां तुम्हारी पिटाई होगी गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट इन बातों ने सुनकर और वो चले गए काजी वहां से उठकर गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ कदी यो के बात कही से ना दानक ने जुलाए ने जुलहे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है जुलहा दानक जुलाहे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे, गरीब दास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फेर मुर्ग, गरीब दास दो जगदा सो तुम पावे नहीं सुरगे। काजी कलमा पढ़त है ये बाँचे फेर कुराने, गरीब दास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे, अपना बच्चा गलती करता उसको मात पिता का फर्ज बने समझाने का, कहने का, मानने चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को बकरे को गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा, तेरी गर्दन यू काटेगा या तो टेट फॉर टेट है भाई, बदले का अदला देना पड़ेगा। पर वो काली मान तो दरठहरी उनका थोड़ी सी, वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, दोनों दीन हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म तुम दया करो और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीब दास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा है सूर में है, सूअर में। हिंदू तो सूअर खावे और मुसलमान खावे गाय, कहते जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है गाय खाओ ना सूरे। दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीब दास गऊ सूर में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक है गाय खाओ ना सूरे, गरीब दास सूर गऊ का एक नूरे। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय ये पंडित से भय मुल्ले, गरीब दास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है पंडित है और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है, हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भाव न छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भये, पंडित से भये मुल्ले, गरीब दास यानी गरीब दास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं, गरीब दास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीब दास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुला कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा ठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करे हलाले, गरीब दास दो दीन का वह होगा हाल बेहाले। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं अलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नो के एकदम काट दे चटके थे, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता, घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को गैसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर और यह गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको और आत्मा को बिस्त भेज दिया। और फिर यूं कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह हे भगवान इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहां उसके बाप का नौकर है भगवान, इसके कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा नो क्या करते, जय या रू आत्मा तन भिष्ट पठाई यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बकर के दिखा अपने कुणबेन करो तुम, बकरिया नंबर कौन आने दे जाए इसी विधि से स्वर्ग जाना हो सबसे पहले अपने कुणबेन चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहां कोई किसी बस में चढ़ना हो ना फटाफट पक्का पता इसे बैठते वहां जावेंगे, पहले अपने बालका ने फटाफट चढ़ 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 ले सीट दे ले सीट दे। उड़ा बकरिया नंबर कौन आने दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे जय या रूह तन भीष्ट पठाई, स्वर्ग भेज दी तो कर तदबीर कभी ला भाई। परमात्मा कहा करते एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है हे अल्लाह अकबर इसके वो देना स्वर्ग में सुथान देना, और एक एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है वो का एक ही गर्दन काटी जा रही है वो कर रहा है, कहते इन में कौन सा स्वर्ग में जागा हमने लागे धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहां शोर मचा रहा, इन में से कौन सा स्वर्ग में जागा कोई साहब ना जा हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीब दास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल, हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मिट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूर, गरीब दास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूर, तुमने निकट नान दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशी, गरीब दास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सौ कोस, कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता सौ कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीब दास उस नरक में ना खुनी को ठोड़े, सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन राते, और गरीब दास हक बोलता और मारे जीव अनाथे, कहते हम तो हक कर रहे हैं हम न्याय कर रहे हैं हलाल करके मारते हैं कलमा बोलते हैं, कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूं सही कर रहा हूं। सुन काजी कलिया किया, अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गर्त खांड टुकड़ारे, गरीब दास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम निवारे। दिखान का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किसा आनंद आओगा, गंध खान लग रही मां से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखे उसका मांस बिखरा पड़ा वो भी जो गलानी आव आदमी ने और तुम इसने खाओ, और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुकड़ार और गरीब दास फिर करो भक्ति ये बूंदे काम निवार, कूड़े काम छोड़ दो बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीब दास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रही है। फिर आगे क्या बताते हैं, फुलके धोवा दाल कर अलवा रोटी खा, और बढ़िया भोजन तक खाना चाहता है एक दाल रोटी और अलवा पूरी खा ले, तेरा गणा जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को। दो फुलके धोवा दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की कह रहे धोई हुई दाल है, और फुलके बढ़िया फुलके बना, फुलके धोवा दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीब दास का जी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए, मांस मिट्टी ना पका। अब इस बात तो दुखी होकर के सिकंदर लोदी वहां पहुंच गया, वहां फिर सारे इकट्ठे होकर मुसलमान और हिंदू सब पहुंच गए, विशेषकर मुसलमानों को आगे कर दिया हिंदू वाले गुरुआ ने क्या जाओ आ तो मौका है तुम्हारा, और कर दो शिकायत तुम्हारा राजा है मुसलमान है तुम्हारी सारी सुनेगा। अब उन्होंने जाकर के क्या कहा, साहा सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुरान, गरीब दास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़े। अब गरीब दास जी कहते हैं अग उस परमात्मा पर जुलाहे पर है इब खेचा ताड़ होने लगी, क्या कहते हैं, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीब दास पगड़ी पटक ये अलख अल्लाह मैं हूं, वहां जाके मौजूद मौजूद नंबरदार से वो कई सैकड़ों की संख्या में और पांच हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए और जाकर राजा के सामने अपनी पगड़ी पटक कर फेंक दी। अगमारी तो इज्जत तार गई एक जुलाई ने और वो नो कहे मांस मिट्टी भी मत खाओ, वो तो कसाई है, पापी है, अपराधी है। बताओ मांस नहीं खाता अपराधी, ये मांस खाओ ये अच्छे आदमी है। अरे निरंजन धन तेरा दरबार तनिक नहीं न्याय विचार। अब फिर क्या कहते हैं सिकंदर लोदी को कहते हैं वो नो कह मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, अल्लाह अकबर मैं ही हूं। तो उनसे सिकंदर ने पूछा भी अब क्या करें कि एक ये इससे कोई गऊ मंगा के वो कटवा के और उसे जीवित करवा के देख लो। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो गाय जीवित कर दी थी तो वह ऐसा ही किया गया जैसा उन्होंने कहा। एक गाय मंगा ली गर्भवती गाबण गाय थी और लाके वहां कत्ल कर दी जैसे वो करते हैं लाल करके काट दी। चार टुकड़े हो गए मां बिट्टिया के, गऊ के पेट में गर्भ था अलग अलग पड़ गया। तब कहा कि उठ कबीर अब क्यों तू चुप बैठा है, हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, तू गाय जीवित करके दिखा दे नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। सिकंदर लोदी ले रहा तलवार हाथ में नंगी। फिर परमात्मा खड़े हुए कहने लगे अब क्यों बैठा है, उठ खड़ा हो करके दिखा। कहते परमात्मा खड़े हुए उसी समय का हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी मेरा नाम कबीर। खड़े हो गए न बोले परमात्मा हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी हमारा नाम कबीर। अब फिर कहने लगे तू कबीर भगवान है तो कर इस गाय को जीवित। परमात्मा ने एक थपकी मारी, एक हाथ मारा गाय के एक मारा बच्चे के, थपकी आशीर्वाद, गाय भी जुड़ गई बच्चा भी जुड़ गया, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर दी दूध की परमात्मा ने। बोलो सतगुरु देव। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं सा सिकंदर देख कर बहुत हुए मुस्कीन, गरीब दास उस सरे की अब थरक दोनों दीने। इसको देखकर जितने भी मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे वो सारे कांपण लाग गए कि तो भाई कसूता पड़ा है जो आम आदमी था। और सिकंदर लोदी कहते खड़े रहे जो खंभ गति सा सिकंदर लोटे। परमात्मा वहां खड़े हर सिकंदर लोदी ने जब ये देखा करामात दंडवत प्रणाम किया उस परमात्मा को। अब परमात्मा कहते हैं अगरम मगरम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीब दास कैसा हासे वो बंक डगर है लीक, काजी मुल्ला उठ गए वो सा कदम जदली ने, गरीब दास उस दुल्हदी की ना कोई सरवर की ने, काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन ला दे, गरीब दास गति को लिखे वो जुल्हा अगम अगा दे। अब कहते हैं काजी और मुल्ला वारे थे तो बाज गए, जब सिकंदर ने परमात्मा के चरण छुए और वह तो चोट गवा गए जो भी सगा हो गया। कहते चले कबीर अस्थाने को पालकियों में बैठे, सिकंदर लोदी ने पालकी मंगवाई इस महापुरुष के लिए परमात्मा के लिए, और पालकी आ करती जैसे पीछे देखा होगा ये पानी भरा करते, एक आगे भी मटका जैसे तराजू कैसी आ करती पूरा लठ बांध कर कंधे उधर के ले जाया करते, ऐसे पालकियों में ले जाया जाता था। बीच में पालकी एक पालना सा लटका दिया करते बढ़िया कक्ष बना के, आगे पीछे उसको आदमी उठाकर चलते थे, वो सबसे यानी वीआईपी का जो है वही वाहन था वो समझ लो। तो पालकी में बैठा के परमात्मा को कबीर जी को और फिर उनके घर तक छोड़ने के लिए गए अपनात्माओं। अब उन्होंने जब सब जगह सब तरह देख लिया कि तुम्हारी किसी तरह भी दाल नहीं गली, जो ज्ञान में अज्ञान देता नहीं और इस तरह भी इसने ऐसी घटना कर दी, सिकंदर लोदी भी इसका साथी हो गया, तब उन्होंने एक और चाल चाली। कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने और मारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों गुरुओं ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी तो ऐसा ही कर दिया। सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास जितने भी डेरे थे और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उसमें तो, और भंडारा चलेगा, एक असरफी मिल लेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिल लेगी, दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दौर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था, एक दोहर और एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हजार का हो रहा है और वो एक टाइम के भोजन पर मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत, उन्होंने सारे चेले चेले सारे ले लिया आखिरी, चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिलेगी एक बार में, असर भी मिलेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आने इतने मिल लेंगे फिर यूस, तो सबको लेगे, जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिल जा करता तो छोटे छोटे बालकान भी ले जाते कि एक ही नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोभी लालची आ गए, 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांगा करो, ज्यादा मत मांगो, ज्यादा तो फिजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहां आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए, और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी, एक लड़का मरा आजीवित किया था एक लड़की, और दो मुंह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे, ये 5 सदस्य थे, उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे, भक्तों को बुलाते सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचय नहीं करते थे, विश्वास हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पर और गणा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता, तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे भी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा, कैसे, जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे सारे चेले चाले ने लेके, आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे, और रविदास जी ने देखा बाहर फ्रेश होने गए सैर सपट्टे को, सुबह सुबह देखा, जहां देखो वही बाबा जी, जहां देखो वही महात्मा जी, उनसे पूछा कैसे आए हो महापुरुषो, तो वह कहने लगे अरे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए, अरे यहां एक कबीर है जुलाहा कबीर और वो भंडारा कर रहा है, भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए क्या फेर बला गेर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा तुम्हें कोई पत्र चिट्ठी गया है, कहां देखो, सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कितके फरेसों थे उल्टे आगे वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, ये शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को, ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं लाखों की संख्या में और सबके बाद चिट्ठी है झूठी के 3 दिन भंडारा करेगा, असर फी देगा, दोहर देगा, उन्होंने सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले, भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही डाल सकता है, बैठ जा आजा। और दरवाजा बंद कर ले भाई, दरवाजा खोल रहे कोई नहीं आपा, और श्याम हो जाएगी, मैं निकल जाऊंगा यहां से अपने लेकर सारे परिवार को, ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के बहुत बुंडी बड़ी आते, आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे, ले हम क्या करेंगे यहां पर, ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में। वहां से टेलीफोन कर दिया, मैं आ रहा हूं, तैयार करो। 900,000 बैल वहीं तैयार किए, उन्हीं हंस आत्माओं को बैल बनाया, और उन्हीं के ऊपर बना बनाया वहां का भोजन, पूड़ी, कचौरी, हलवा, खीर, दही, बड़े, जलेबी, लड्डू, खुरमे हैं, और पूरी सब्जी कई कई प्रकार की, दही के माठ भर भर कर चल पड़े। एक सेकंड में नीचे पृथ्वी पर सारे के सारे 900,000 बैल, उनके ऊपर गधे का बोरा होता जैसे, ऐसे बोरों में भर रखा माल, कति बढ़िया। और साथ में वहीं से भक्त आए गणे, वहां सेवा करने वाले सतलोक से 18,00,000 आदमियों को जमाना कोई हंसी खेल है। और भोजन, और फिर उन्हें पानी, ऊपर से एक जल की धारा जैसे ट्यूबवेल पड़ा करे, नो चालन लागू आकाश थे, और फिर बचे हुआ उसमें जावा थी गंगा में, वही गंगा जैसा जल आ रहा था सतलोक में, ये गंगा सतलोक से आई है। सबको पानी वहां से भर भर कर ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी गेर दी ने, क्या आज पता लगेगा, उसने शेख तकी एक उनका धार्मिक गुरु था, उनकी सबकी मिलकर ये एक मीटिंग से काम हुआ था। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह के पास भी चिट्ठी पहुंच गई, शेख तकी ने कहा जी आपका नोता आया, आपके गुरु जी बुला रहे हैं, चलोगे? अब सिकंदर लोधी बोला जी गुरु जी बुला रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूंगा, अवश्य जाऊंगा। अब सिकंदर लोधी के गुरुजी कैसे बने थे ये लंबी कहानी है, कल बताएंगे, अभी सिंपल इतना ही कहें। तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर काशी की तरफ प्रस्थान करा, हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड ले लिए, शेख तकी साथ में, आज पता चलेगा इसका ये क्या करता, ला रहा है तो खुदा आ रहा है, आज वो मिलेगा ही नहीं इसको। अब वहां कर देखा, क्या देखा शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने, कि उधर से परमात्मा दूसरा रूप धारण करके एक केसो बंजारा बनकर, बंजारा कौन होता था, एक बिजनेसमैन को बंजारे कहा करते थे। वो बंजारे किस टाइप के होते थे कि बैलों के ऊपर खांड, बाजरा, ज्वार लाद कर ट्रांसपोर्ट करा करते थे, एक मंडी से दूसरी मंडी में। आजकल तो ट्रक हो गए, फिर बैलगाड़ियां होगी थी, उससे पहले केवल बैलों के ऊपर सामान रखकर ले जाते थे, 100-100, 200-200, 400-400 बैल इकट्ठे लाइन पंक्तियों में ले जाया करते थे। रस्ते थे नहीं, यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। तो ऐसे केसो नाम दूसरे रूप से मालिक आए गए और टेंट लगा दिए ना, सफेद सफेद सब जगह। और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहां से और बैल, उनके जमीन पर पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाने उनकी लीला, या तो पैर टकते पाप लग गई थी, भूडी पृथ्वी जगह जगह जीव मरते कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहां से भगत आए थे उनके भी न्यू के न्यू, और तंबू लगा दिए, उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल गेर दिनों, जैसे 18,00,000 आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावक होनी, नो टेंट, पूरी पाल की पाल भर दी, डेर के डेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहां से आए थे भगत ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जज जयकार हो रही है, सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहां पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से, उन्होंने वहां आकर देखा, पूछा कि भी कबीर साहब को कहां है, तो वहां के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी बिजनेसमैन सा दिखे सेठ, और ये कर रहा है सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान कबीर जी से। केसो रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदल यार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा, ये दास हाजिर बैठे हैं। अब वो सेकंद शेख तकी नो कह रहा गजब हो यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो मांसी मर गई, गया तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहां है भगवान, क्यों वो नहीं आई यहां पर। तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है मौजून की जब आओगे आ जाएंगे, यहां सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। अब हाथी पर बैठकर पहुंच गए वहां जहां झोंपड़ी थी मालिक की, साथ में सैनिक भी। सिकंदर लोधी हाथी से नीचे उतरा, दरवाजा खटखटाया, रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो आ गए यहां पर भी, आ लिए खुड़का हो गया। तो कबीर साहब बोले बोल रहे मत, दरवाजा नहीं खोलेंगे, चले जाएंगे गाल धूपड़ करके। सिकंदर लोधी ने कहा दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। परमात्मा ने पूछा भाई कौन, आपका बच्चा आया है, आपका दास सिकंदर आया है। कहा राजन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम तो आज के मेहमान हूं, मैं तो यहां पर, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिया है भगवान राजन, ये मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मैं आज रात्रि में निकल जाऊंगा काशी को छोड़कर, और भगवान मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इन्होंने, इन झूठी चिट्ठी डाल रखी है, मेरे पास तो सुबह शाम का आहार भी मुश्किल से होता है, 18 लाख व्यक्ति सामने बैठे मैं कैसे भोजन कराऊं भगवान, अब ये मुझे नहीं जीने देंगे, मैं भाग जाऊंगा रात्रि में। तब सिकंदर लोधी कहता है भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं बहका सकते, आपने कैसा रंग लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है और सभी आपके दर्शन के ललायत हैं, हे भगवान एक बार इस दास को दर्शन दो। तब परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे, दरवाजा खोल दे। रविदास जी ने जो ही दरवाजा खोला, दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने और कहा भगवान आपके दर्शन करना चाहते हैं, सभी जनता कृतार्थ हो जाएगी भगवान, एक बार दास के साथ चलो। अब सिकंदर लोधी ने कहा परमात्मा आपने ठाठ कर रखे, सबके जो जयकार हो रही है, जो मांगे वही आहार उनको उपलब्ध करवा रखे है भगवान, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मुझे नहीं बहका सकते, मैंने पहचान रखा आपको, एक बार चलो मालिक दर्शन दे दो। परमात्मा खड़े हुए और मुकुट पैर गए, एकदम मुकुट आ गया अपने आप मालिक के सिर पे, सतलोक थे जो सतलोक में पैर के बैठते हैं दाता, तेजो में चमकीला मुकुट ऊपर सिर पे आके रखा गया और बाहर कदम निकला, झोपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर साहब के ऊपर। बोलो सतगुरु देव। रविदास जी उनके ऊपर चवर करने लगे। सिकंदर लोधी ने कहा भक्त दास को सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा लूटते हो। सिकंदर लोधी परमात्मा पर चवर करने लगे और हाथी की अंबारी होती थी एक कक्ष, एक रूम बनाया करते थे राजा के लिए हल्की सी लकड़ी का बहुत सुंदर, उसके चार दरवाजे होते थे, चारों दरवाजे खोल दिए यानी बिल्कुल कोके के डंडे डंडे से रह गए, और रविदास जी को कबीर साहब को अपने साथ हाथी पर बैठा लिया। कबीर साहब पर राजा बैठा बैठा चंवर कर रहा हाथी के ऊपर, और हाथी गली से आ रहा है वहीं जहां पर भंडारा हो रहा है। अब जो ही परमात्मा वहां आए सारे मेले में सारे में घुमा दिया मेला, 18 लाख आदमी तो पूरे 2 किलोमीटर में गए, 3 किलोमीटर में गए, बैठे थे 4 में गए, खाना खा रहे थे, सारे घुमा ले। सारे जज जयकार और ने पूछ रहे कौन सा कबीर क्यों बैठा हाथी पे। काशी वाले कहते हैं कि वो देखो, काशी वाले कहते हैं ये देखो जो राजा तंवर कर रहा है सिकंदर लोधी, ये है वो कबीर। सारे मेले में गए घूम के, और दूसरे रूप में जो केशव बैठा था मालिक का दूसरा रूप, उसने संदेशा भेजा कि परमात्मा को एक बार यहां लिवा लाओ, यहां आ जाए कुछ देर मेरे पास बैठे। उसने जाकर के संदेशा दिया कि आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है, आपकी टेंट में इंतजारी है, उसमें सिकंदर लोधी भी साथ था। परमात्मा हाथी से नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी पौड़ी लगाकर और पहुंच गए वहां पर जहां पर केशव बैठा था। जो ही परमात्मा वहां पहुंचे कबीर जी, एक अपने आप एक तकत बिछ गया, उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफेद सफेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया, चारों तरफ उसके सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच के। हे परमात्मा, आप इसे सुंदर लोक न छोड़ कर सतलोक ने आप यहां किस लिए आए, इसे गंदे लोक में यहां खान पीन न भी कोई ना इनके पास, और आप इनका भला करो, ये आपका बुरा करते हैं, आप क्यों आए इसे गंदे लोक में। तब परमात्मा कहते हैं केशव तू मेरे दर्द को नहीं समझता, यानी परमात्मा ने लीला करी थी, उनने तो बुरा करण की सोची थी कबीर जी भाग जाएंगे, और परमात्मा ने सोचे थे क्यों करे इकट्ठे कर दे मेरे बच्चा ने, मैं सुना दू इन मूर्खा ने के साग सहयोग। वह तो दुखी हुए, और अपने बच्चों के लिए तो सब सतलोक से आहार भी वो सबको यहां भी वो दे रहा है, सतलोक में भी वो खवा रहा है, वो भोजन में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बच्चे वो तो खिलाना ही था उसने, लेकिन उसने यू ज्ञान देना था। जैसे ही बाप को यहां बुलाते हैं ये दास परमात्मा की कथा सुनाता है, अब यहां ये बहाना कर रखा है। तब परमात्मा ने कहा केशव आप मेरे दर्द को नहीं जानते, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, हिंदू मुसलमान जितने हैं, और इस काल ने ये मेरे दुश्मन बना रखे हैं, मैं इनसे दूर हूं, क्योंकि अपने बच्चा तो दूर हुआ जाकर किसी से, इनकी आंख खोलन आया हूं मैं, किसी तरह मैंने पहचान ले। 8 पैर तक चर्चा करी मालिक ने, 24 घंटे तक सत्संग सुनाया, और लाखों की संख्या में जो आए थे वो बोली बेचारे देखो घर छोड़कर गए हैं, वो गए तो भगवान के लिए थे, साधु संत बने, अब उनको रास्ता कहीं मिला नहीं, जैसा किसी गुरु ने भ्रमित कर दिया, काल के दूत ने उसके चिपके बैठे थे, जब वो ज्ञान सुना सब फड़क का आगे ने बोले जी हमने नाम दे दो, हम तो लुट गए पिट गए, लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और 3 दिन तक कितनी बार किसी ने भोजन खाया, 2 बार खाओ 4 बार खाओ चाहे 10 बार खाओ, इतनी बार दौर और असर भी दे रहे थे। 3रे दिन जब वापस चले सब टेंट उठा लिए, वो बंजारे आ रहे थे सेवक, वो भी बैलों पर रख लिया सारा सामान और कहा चलो भाई, केशव कहने लगा चलो मैं आ रहा हूं, वो चल पड़े। केशव और कबीर साहब वहां खड़े रहे, सिकंदर लोधी शेख तक की और भी सैकड़ों व्यक्ति शेष थे। अब क्या देखा कि जो बैल गंगा पार करके निकलने लगे तो गंगा घुटनों पानी रह गया, उसमें एकदम नीचे चली गई, सारे पार हो लिए। जब देखे तेनू थे भाई ये निकलेंगे कैसे, फिर देखा रहा एकदम गंगा उतर गई, सारे पार हो लिए, जो फिर उसी फुल होगी। कुछ देर बातें करते रहे, फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि हे केशव जी आप जाओ, आपके बंजारे दूर चले जाएंगे नहीं तो। अब देखा इधर वहां कुछ भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे, तो पूछा कि कहां गए, परमात्मा बोले जहां से आए थे वहां गए। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा के अंदर वो केशव आला रूप न्यो का न्यू देखते देखते अंदर समा गया, अकेले कबीर परमात्मा वहां रह गए। तो क्या बताते हैं, शेख तकी कहने लगा कि चल राजा इसे भंडारे हम 100 दे दें, क्या किया है ना महोत्साह किया है। महोच्छा तो वो होता है जो किसी, जैसे कोई गुरु बता देता था कि तेरे पिता का काज कर देना तो उसकी मुक्ति ना हो, तो उसके लिए तो फॉर्मेलिटी सी कराया करे, कम से कम पैसे में आइटम घने जाया करे, वो तो सब महोच्छा। अरे एक जोनार होती है, जग होती है, जो खुशी में करते हैं, किसी का कई साल में बच्चा हो जाता था तो वो सब इच्छा से खुल के धर्म किया करता था, खुल के पैसे लगाता था। तो उसके विषय में बताते हैं गरीबदास जी कि कोई कहे जग जोनार करी, सब भगत अच्छी आत्मा थी, वो ठाठ कर दिए ईसा यज्ञ, ईसा जोनार कर दे, देखा ने सुना वो महान आत्मा तो नो करते हुए गए और शेक तक ही गाड़ी देने के किए जाना ही, इसी से हम सो भंडारे कर दें के कराए न महोत्साह सा कराया इसने। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोत्साह, भाई बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डे ओछा। बोलो सतगुरु दे। सत साहे। तो परमात्मा कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। तो पुणात्माओं परमात्मा के सामने इतने अतिथि आगे थे, सबका भंडारा भर दिया। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। ये धनी का काम था भाई, नो खड़े हो जाएंगे आपके सामने आके जब कोई आपत्ति आओगी, विश्वास रखना। बोलो सतगुरु दे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रतनहार कबीर परमेश्वर जी, ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अमित औजा हैं, इन्हीं को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहां पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपनी जानकारी अपने पाने का मेथड विधि स्वयं ही बता कर जाते हैं। ये जो सत्संग 7 दिवसीय चल रहा है ये उसी उपलक्ष में है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी, यानी फाल्गुन उतरते की दवास, दिन के 10 बजे परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर एक साधु संत रूप में प्रकट हुए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा प्रांत भारतवर्ष में उनको आकर मिले थे। उस अपनी अच्छी आत्मा को, नेक आत्मा को तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, सभी ब्रह्मांडों की, सभी इन देवों की स्थिति से परिचित करवाया था, और फिर उस आत्मा को वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ दिया था। उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का, सब ऊपर का जो ज्ञान है आंखों देखा वर्णन किया। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम देखा सो सच है और सकल परपंच, हमने जो देखा और बताया ये सत्य है, बाकी जो भी आपको ज्ञान प्राप्त है वो व्यर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त एक मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, इनमें ये वैसे तो बहुत सारे ढेर सारे मंत्र हैं जो परमात्मा की महिमा को बताते हैं। इन मंत्रों में जो अनुवाद करता है वो उनका स्वयं का जो मानना है कि परमात्मा निराकार है, और वो उनका अनुवाद करता वही है जो परमात्मा को निराकार बताते थे। वो कौन है? महर्षि दयानंद के अनुयायी, उसके चेले, उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। और यह मेर मालिक की कि उन्होंने ये यथार्थ अनुवाद कर दिया, जबकि वो भगवान को निराकार मानते, उनका फाइनल फैसला है ये, वो सुनना भी पसंद नहीं करते। कोई ये कह दे भगवान नर आकार है साकार है, और ये खेल मालिक का देखो, उन्हीं के करकमलों से वेदों का अनुवाद सही यथार्थ करवा दिया। उनको शायद ध्यान भी ना होगा हमने के लिख दिया, क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनके हाथ में सब रिमोट है। यदि ये दास अनुवाद करता, दास अनुवाद करेगा वो तो कति 100% सही होगा, ये तो आप सत मान लेना, क्योंकि हमने सत का सहारा मिला हुआ है। हमारे को सत साहेब सच्चे भगवान कबीर परमेश्वर का सिर पर पंजा प्राप्त है, तो हम जो कहेंगे वो सारी ही सच्ची होंगी। लेकिन परमात्मा के बच्चों को इस दास की बात पर इतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको ये कहने का अवसर मिल जाता कि रामपाल किया हुआ अनुवाद कैसे विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा नहीं जानता। और यही बिजली अभी तक गिरी हुई थी, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ज्ञान दे दिया था जो वेदों में पुराणों में गीता में विद्यमान है, कुरान में विद्यमान है, बाइबल में विद्यमान है। और इन काल के दूतों ने, ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने ये कहकर के परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ना ये फारसी जानता, ना उर्दू पढ़िया, ना ये अरबी पढ़िया, और न ही ये संस्कृत भाषा जानता है, तो ये झूठ बोलता है। और ये स्वाभाविक है ये मान लेना कि जो संस्कृत नहीं जानता और वो संस्कृत के सदग्रंथों के बारे में जो बात कहे, और उसके विपरीत दूसरे संस्कृत भाषा जानने वाले कहें, तो उसकी बात विश्वास नहीं हो सकता। ऐसा ही बना रहा। आज भी ये जो की त्यो स्थिति रह जाती यदि दास अनुवाद करता और फिर आपको समाज में या भक्तों को देता, तो उनको विश्वास नहीं होता और ये कमजोरी और रह जाती। अब परमात्मा परमात्मा ही होता है, उसका कोई भी कार्य, उसमें कोई भी कार्य में त्रुटि नहीं हो सकती। अब इन्हीं के द्वारा लिखवा दिया सच्चाई, अब आपके रूबरू कराते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मैं उन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पाने की विधि उसमें नहीं है, वो गुप्त रखी है परमात्मा ने। वो लिखी थी सूक्ष्म वेद में, काल ने नष्ट कर दी, फिर परमात्मा उस ज्ञान को देने के लिए स्वयं चलकर आते सतलोक से। अब आपको उन वेद मंत्रों से रूबरू कराते हैं, जो उन्हीं के अनुवाद हैं, और उन्होंने थोड़ा बहुत कोई त्रुटि की भी है तो उससे ही सोल्व हो जाती है प्रॉब्लम। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये 9-10 मंडल इकट्ठा अनुवाद है। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान मैं परमात्मा। यहां इन्होंने क्या कर दिया, इस ये शब्द है कबीर, हम वह को वह बोलते हैं जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहां हम इसको कबीर बोलेंगे, कबीर अपनी भाषा में। इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया, अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता, कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी जच जाती, लेकिन महिमा परमात्मा की चल रही है तो यह कवि शब्द है, इसका अर्थ है कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ भगत को, आत्मा को प्राप्त होता है। अब इस कबीर देव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे यह यजुर्वेद है, अब जैसे महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 1 में यजु शब्द है यजु, और उसका अर्थ किया यजुर्वेद, वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और है, और महिमा है यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद की महिमा वहां अगर अर्थ कर देने से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, समझना हो कि कहना चाहे। तो इन्होंने यहां गड़बड़ ऐसी ही कर दी, कबीर देव का अर्थ कर दिया, लिखना था कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं, देव माने परमात्मा। देखो यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद के कर कमलों से अनुवादित है, प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य निधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, और मुद्रक हुई प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर देखो अध्याय है, यह है 36वां, 36वां अध्याय 36वां। इसका प्रथम ही मंत्र है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहां इन वेदों का अर्थ है जैसे श्याम प्राणम, ऐसे ये यजु है, इसका अर्थ इसने यहां किया है। अब देखो यजु माने, अब इसने सही लिख दिया यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ओके है, और इसका अर्थ कर दिया जावे, यजु का अर्थ तो होता है कुछ ना कुछ, यज्ञ स्तुतियां लिख देता है, यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो यजुर्वेद ना लिखते तो सारा ही इसका अनुवाद व्यर्थ हो जाता। तो यहां इन्हें सही लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही जहां कवि है, ये कबीर बोलते हैं हम, इसको यजुर भी बोल सकते हैं, जैसे पुनः बोलो पुनर्बोलो, तो ये यजुर, तो हमने वहां यहां लिखना चाहिए, उसने लिखना चाहिए कबीर देव, जैसे यहां यजुर्वेद लिख दिया।